पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम जय राम जय जय राम श्री 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 रामचंद्र भगवान की जय लोकाभिरामं रणरंगधीरं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पूरवे मारुति यस्या तं वन्दे रघुनन्दनम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पिछले कुछ रविवारों से मंदिर में नाम रामायण पर चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा आज के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में भी रामायण से ही कुछ सुनाते हैं। रामायण से सुनना चाहेंगे तो? रामायण एक ऐसी कथा है, भगवान की एक ऐसी लीला है, पूरे विश्व भर में राम का नाम सब जानते हैं, रामायण को सब जानते हैं। आज हम विदेश में भी कहीं चले जाए तो रामायण के बारे में उन्होंने सुना है। तो श्री रामचंद्र की ये जो लीला है उसमें से भक्तों को सीखने लायक बहुत सारे पाठ है। तो आज एक आधा घंटे के एक घंटे के समय में पता नहीं कितना हम लोग ले पाएंगे, लेकिन ये जो नवविध भक्ति का प्रोसेस है उसके नवविध भक्ति का हर एक आचार्य या हर एक रिप्रेजेंटेटिव हम रामायण में देख पाते हैं। नवविध भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण, पाद सेवन, आत्मनिवेदन, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, है ना? तो अगर आप देखो ये नवविधि भक्ति का हर एक पात्र रामायण में हम देख पाते हैं। अगर श्रवण हम देखो तो रामायण में श्रवण का जो है आचार्य कौन है? हनुमान जी। हमने सुना है शास्त्र में कि हनुमान जी अभी भी जहाँ राम की कथा होती है वह आके सुनते हैं। तो श्रवणम हनुमान जी, और अर्चनम शबरी माता। शबरी माता ने भगवान की अर्चन की है। अब आप बोलेंगे भगवान की अर्चन करना मतलब भगवान की पूजा करना, अगरबत्ती दिखाओ, दीप दिखाओ, भगवान को नैवेद्य चढ़ाओ। तो अगर रामायण में देखा जाए तो शबरी से अच्छा नैवेद्य किसने दिया भगवान को? किसी ने नहीं। शबरी ने क्या दिया था भगवान को? झूठे बैल, झूठे फल दिए थे, है ना? तो शबरी माता से उत्तम नैवेद्य, क्योंकि भगवान ने शबरी माता का नैवेद्य बड़े ही प्यार से स्वीकार किया था। तो भक्ति की पराकाष्ठा देखिए आप, भक्ति का एक उत्तम स्थान पे जो है शबरी माता है। हम दे पाएंगे भगवान को हमारा झूठा? नहीं। भगवान स्वीकार करते हैं? शबरी माता ने इतना, भगवान तो स्वीकार करेंगे लेकिन हमारा उसमें प्यार नहीं है। हम जब भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं तो हम यांत्रिक रूप से चढ़ाते हैं, क्योंकि बोला गया है तो चढ़ाना है, तो तीन बार ये मंत्र बोलो, हरे कृष्णा बोलो, बस हो गया। लेकिन शबरी माता ने जब झूठे बैर भी दिए तो बड़े ही प्यार से। हम इतनी महंगी महंगी ऑस्ट्रेलियन सीडलेस ग्रेप्स देते हैं फिर भी भगवान स्वीकार नहीं करते, है ना? और वो तो सस्ते से सस्ते, सारे फलों में सस्ता है बैर, है कि नहीं? मार्केट में देखो, लेकिन प्यार से दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। तो अर्चनम में शबरी माता, वंदनम में विभीषण, विभीषण वंदनम में, आत्मनिवेदन में जटायु। जटायु ने अपने शरीर का त्याग किया राम की सेवा में, है ना? साख्य में सुग्रीव, उसने अपनी दोस्ती निभाई, भगवान उसे अपना सखा मानते थे, अपना दोस्त मानते थे, सुग्रीव को अपने बराबर स्थान देते थे, भगवान उसको आलिंगन करते थे, अपने पास बिठाते थे और उसे अपना सखा बोलते थे। दास्यम लक्ष्मण और कोई नाम ही नहीं हो सकता, मन से तन से भगवान की सेवा की है। हनुमान जी श्रवणम कीर्तनम, रामायण में कीर्तनम, वाल्मीकि जिसने रामायण की कथा का कीर्तन किया, लवकुश जिसने रामायण की कथा का कीर्तन किया, श्रवणम कीर्तनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम पाद सेवा। पाद सेवा किसने की भगवान की, ये तो आप बोल पाएंगे, भरत महाराज ने, है ना, भरत महाराज ने की ना पाद सेवा। भरत महाराज ने पाद सेवा कैसे की, उसने भगवान की पादुका का सेवा किया, है ना। तो आज की चर्चा में हम लोग भरत महाराज से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सारे भक्तों में भरत महाराज का एक प्रतीक स्थान है, क्योंकि भरत महाराज ने भगवान की सेवा विरह में की। बहुत बार एक कंपैरिजन होता है लक्ष्मण और भरत में कि किसकी सेवा उत्तम है, तो हम इस योग्य नहीं है कि इस कंपैरिजन पे हम डिस्कस करें, बट बोलने का तात्पर्य यह है कि भरत महाराज की सेवा बहुत उत्तम है, क्योंकि भरत ने विरह में सेवा की। आप जिसको प्यार करते हो, अगर आप उसके साथ रहते हो, उसकी सेवा करते हो, तो उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जिसे प्यार करते हो उससे दूर रह के भी उसके आज्ञा का पालन करना, उपदेशों का पालन करना बहुत कठिन होता है। हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि जब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पास पूरी में आते थे, तो चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के जाने का उनका दिल नहीं करता था, है ना, और चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे हम आपके पास ही रह जाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते थे नहीं, जाओ प्रचार करो। हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं कि भक्त लोग प्रभुपाद के पास ही रहना चाहते थे, उनको दिल नहीं करता था प्रभुपाद को छोड़ के जाना, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे नहीं, जाओ प्रचार करो। प्रभुपाद बोलते थे अगर आप सच में मुझे प्यार करते हैं तो मेरे साथ रहना नहीं, मैं जो चाहता हूँ उसे करिए, मैं चाहता हूँ कि आप प्रचार करिए। तो भरत अगर चाहते तो वो भी वन में रह जाते, लेकिन भगवान से दूर रह के भी भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की सेवा उन्होंने इस रूप में की है। तो भरत महाराज के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी हम लोग सेवा को एक ऐसा रूप देते हैं जो हमें कम्फर्टेबल है, हम चाहते हैं कि मैं जहाँ कंफर्ट हूँ बस वो सेवा मेरे लिए ठीक है, पर भरत महाराज के लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वो भगवान से दूर थे, भगवान के लिए रोते थे, भगवान को याद करते थे, फिर भी उन्होंने सेवा की। विरह में भगवान को प्यार करना सबसे उत्तम है, जैसे कि गोपिका, गोपिया अगर चाहती तो वो भगवान के विरह में अपने प्राण को त्याग कर सकती थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी जिंदा रहने की। गोपिया क्या बोलती थी, कहते थे कि भगवान के विरह में जीना, सांस लेना बहुत मुश्किल है, अगर सबसे सरल मार्ग होता कि अगर हम हमारे देह को त्याग कर लेते, पीड़ा चली जाती, लेकिन हर वक्त हम यही सोचते हैं कि अगर ठाकुर जी मथुरा से आए वापस और उन्होंने देखा कि हम लोग नहीं है तो वो दुख करेंगे, इसलिए हमें जीना है। तो कितनी उत्तम बात है ये, समझ रहे हैं ना आप, कितनी उत्तम बात है ना। तो भगवान के विरह में सेवा करना, भगवान के विरह में भी उनको प्यार करना, ये सबसे उत्तम है। गोपियों ने ये उदाहरण देके सिखाया है। तो भरत महाराज का भी वही स्टेज था, वो भगवान से दूर रह के भी भगवान को याद करते थे और भगवान की सेवा करते थे। और भरत महाराज ने अपनी माता को भी त्याग कर दिया था। साधारण तो माता पिता के साथ में जो हमारा बंधन है, पत्नी के साथ में, पति के साथ में, बच्चों के साथ में, ये बहुत एक काफ़ी गाढ़ा संबंध होता है, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने भगवान की अवज्ञा की है, भगवान को दुख पहुँचाया है, तो उन्होंने अपनी माता से संबंध तोड़ दिए। तो ये भी हम बहुत एक सीख सकते हैं, जब भक्ति में कोई अवरोधन, भक्ति में अगर कोई बाधाएं डालते हैं तो हम उनका त्याग कर सकते हैं। वो बेशक हमारी माँ हो सकती है या हमारे पिता हो सकते हैं। हम देखते हैं शास्त्र में कहानियाँ कैसे ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, भरत ने अपनी माँ का त्याग किया। तो जो भक्ति जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, वैसे संबंध को जोड़ के रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें भगवान की सेवा करना है। ये मानव जीवन बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर इस जीवन में हम हमारे रिश्तों में ही उलझे रहेंगे तो कैसे ऊपर जा सकते हैं। तो उसका मतलब मैं आज के प्रवचन में ये बोलने नहीं आई हूँ कि आप अपने पति पत्नी माँ बाप बच्चों को छोड़ दो। एक साधारण बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग कितने उत्तम भक्त थे। और फिर हम देखते हैं कैसे भरत महाराज जब अपने नैनिहाल से, अपने मामा जी के घर से आते हैं और उनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे अयोध्या में घटना घट चुकी है और श्री राम वनवास में चले गए हैं, तो वो अपने माता का त्याग करते हैं और सारे जो प्रजा है सबको लेके भगवान की ओर चल देते हैं। तो भगवान सबसे पहले कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। ये पूरी रामायण कथा में भगवान चित्रकूट जाते हैं, उसके बाद दंडकारण्य जाते हैं और उसके बाद पंचवटी, जहाँ से सीता माता का अपहरण करते हैं रावण और फिर सीता माता को जीत के अयोध्या वापस जाते हैं। तो इस दौरान भगवान चित्रकूट में होते हैं और इधर भरत को जब पता चलता है तो बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी माँ को अपशब्द बोलते हैं और सारे प्रजा को लेके वे निकल पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पूरा वृत्तांत है उनका, अयोध्या से निकलना, चित्रकूट तक पहुँचना, वो उतना से एक उसमें हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे भरत महाराज निकलते हैं, उनके साथ अयोध्या में जितने भी लोग हैं सब बैलगाड़ियों में बैठ के, कुछ लोग चल के, कुछ लोग बैलगाड़ी में, कुछ लोग घोड़ों पे, सब जो है भरत महाराज के पीछे निकल पड़ते हैं। तो जब सारे बैठ जाते हैं, सब तैयार हो जाते हैं और सामने चलने की देरी है, तो भरत महाराज को एक विचार आता है। वो सोचते हैं कि मेरे जो बड़े भाई है श्री राम, इतनी मेहनत से नंगे पांव वन वन भटक रहे हैं और मैं यहाँ राजा के जैसे रथ पे बैठ के जा रहा हूँ, ये सही नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने पादुकाएं रथ पे छोड़ के नंगे पांव सबसे आगे जाके चलने लगे। जो पूरा उनका एक प्रोसेशन था जिसमें सब नागरिक चल रहे थे, तो आगे जाके खड़े हो गए और वो भी चलना शुरू कर दिए। और जैसे सब नागरिकों ने देखा कि हमारे जो कुंवर है, हमारे जो होने वाले राजा है, जो भरत है, वो नंगे पांव चल रहे हैं, तो बाकी सब लोग भी जो है अपनी बैलगाड़ियों से उतर के चलने लगे। जब बाकी का सब चलने लगे तो सबकी तो इतनी शक्ति नहीं है जो नंगे पांव चले, कुछ लोग तो बहुत बूढ़े हैं, बिल्कुल उनकी शक्ति नहीं है। भगवान को मिलने की उत्सुकता से वो चल पड़े हैं लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी चलना शुरू कर दिए। तो जब कौशल्या माता ने ये देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो उन्होंने इमीडिएटली भरत को बुलाया कि भाई तुम इधर आओ, तुम रथ पे चढ़ जाओ। तो भरत ने बोला, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, जब मेरे भाई बिना रथ के चल रहे हैं तो मैं भी बिना रथ के, मैं भी नंगे पांव चलूंगा। तो कौशल्या ने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिसके वजह से दूसरों को तकलीफ हो, तुम्हारे वजह से दूसरे चल रहे हैं रास्ते पे, तो तुम्हें रथ पे बैठना ही पड़ेगा। तो फिर भरत महाराज रथ पे बैठ गए। तो भरत महाराज रास्ते भर सोच रहे थे कि भाई कहाँ गलती हुआ, मैं तो एक साधारण सा नियम पालन करने की कोशिश कर रहा था, गलती कहाँ हो गई। तो गलती यहाँ हो जाती है कि जब हम हमारे नियम का या हमारे भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तब हमको नियम पालन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इससे हम भी एक सीख ले सकते हैं, जब हमारी भक्ति जीवन में भी, हम भी जब हमारी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं तब हम पकड़े जाते हैं, तब हमें माया पीछे खींच लेती है। ऐसा होता है ना, जैसे अभी कोई साधारण सी बात है, जैसे हम इस्कॉन में भक्त है तो प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो अगर आप जाओ कोई मैरिज में या कोई विवाह में जाओ, तो कोई आपको बोलेंगे भाई आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तो आप बोलेंगे भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तब क्या होगा? वो लोग सीधा आपको प्रवचन देना शुरू करेंगे, देखिए आपका एज बहुत छोटा है, ये सब आपको शोभा नहीं देता, आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? पूरा पूरा कम से कम आधा घंटा का प्रवचन सुनना पड़ेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम हमारे नियमों का, भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सिंपल अगर हम बोल दें कि भाई हम घर से खा के आए हैं, तो बोलेंगे अरे शादी में घर से खा के कैसे आएंगे, शादी में तो यही खाना पड़ेगा, तो हमें क्या बोलना है, बोलिए हमारी तबीयत खराब है, हमारा पेट खराब है, तब कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्लास से भी बच जाएगा और आपके काम का काम भी हो जाएगा। लेकिन हमें प्रदर्शन करने की बहुत आदत है, जब तक प्रदर्शन नहीं करते हमें खुशी नहीं होती। किसी के घर जाओ, बोलो आप चाय कॉफ़ी लेंगे, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे अरे चाय छोड़ के तो 15 साल हो गए। फिर तुमको किसी ने नहीं पूछा कितने साल हो गए, चाय लोगे नहीं लोगे, तो उतने से बात थी। प्रदर्शन छोटा सा कहीं एक थोड़ा ऐड करना है, भाई हम इतने सालों का नियम है हमारा। और जैसे हम वो प्रदर्शन करते हैं माया हमें नहीं, वो जो मेढक होता है, जब मेढक बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तब क्या होता है, सांप उसको पकड़ लेता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, प्रदर्शन नहीं करना है, भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं। देखिए आपको पता है बहुत सारे जो धनी लोग होते हैं उनके पास कितना धन है वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो नहीं बताऊंगा तो बढ़ जाएगा, है ना। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो और भी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो देख दिखावा में मैं दिखा दूँ, मैं किसी को बता दूँ मैं कितनी अच्छे भक्त हूँ, तो वहाँ हम नीचे गिर जाते हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी ये आदत है। जब तक किसी को बता ना ले कि हम चतुर्मास से ऐसे पालन कर रहे हैं, हमारो शांति नहीं मिलेगी, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भरत महाराज से हम सीखते हैं कि भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भरत महाराज रथ पे बैठ गए और फिर वो आगे आगे चल रहे। तो सबसे पहले जैसे वो आगे चले तो उनको गुहा निषादराज से सामना हुआ। हम सब जानते हैं कि निषादराज भगवान के बहुत अच्छे बंधु थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो निषादराज को थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये क्यों आया है भरत, वो भी अकेला नहीं, इतने लोग, हजारों लोग उसके पीछे आ रहे हैं, क्यों इतने लोग आ रहे हैं, क्या वो श्री राम को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो निषादराज जैसे ही भरत के सामने आते हैं तो वैसे ही सुमित्रा उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं कि ये निषादराज है, श्री राम के दोस्त है। तो भरत महाराज एकदम सीधा निषादराज के पैर छूते हैं कि जो श्री राम के मित्र है तो मेरे भी पूजनीय हुए। फिर भी निषादराज उनको पूछते हैं क्या तुम राम को हानि पहुंचाने आए हो, तुम्हें तो अयोध्या का राज मिल गया, अब तुमको क्या चाहिए। फिर भरत रोने लगते हैं और सीधा निषादराज का पैर पकड़ के रोते हैं कि मुझे आप गलत मत समझिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो श्री राम को मनाने के लिए आया हूँ कि मेरे साथ वापस चलो, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो यह है भक्ति में दूसरा अवरोध, जहाँ पे समाज के लोग हमें गलत समझेंगे। अभी भी ऐसा आप महसूस करते हैं ना, ऐसा होता है ना, जब आप तिलक लगा के जाओ या आप किसी को बोलो तो हमेशा वो गलत मतलब निकालते हैं, गलत सोचते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों करना है, हमारी भावनाओं को गलत सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जब निषादराज भरत को गलत भी समझते हैं फिर भी भरत जो है निरुत्साह नहीं होते, वो फिर भी आगे चलते हैं, उसको मनाते हैं और अपना काम बढ़ाते हैं आगे। तो ऐसे जब हम भी भक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने भी ऐसे समाज के कुछ लोग आ सकते हैं जो हमें नहीं मानते, हमें नहीं समझते, फिर भी हमें निरुत्साह नहीं होना चाहिए, वो हमें समझे या ना समझे। समाज के लोगों का देखो ऐसा है, आप कुछ भी करो कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कैसे एक पिता और पुत्र एक गधे को लेके जाते हैं, अब तो जानते होंगे ये कहानी। तो गधे को लेके जाते हैं तो पिता बैठ जाता है गधा पे, पिता जब गधा पे बैठ जाता है तो आते जाते सारे बोलते हैं कि पिता तो बहुत क्रूर है, छोटा सा बच्चा रास्ता में चला जा रहा है और पिताजी बहुत आराम से गधे पे बैठ के जा रहे हैं। फिर पिताजी क्या करते हैं, वो चलने लगते हैं और बेटे को बिठा देते गधे पे। तो सारे बोलते ये बेटा तो बहुत क्रूर है, बूढ़े पिता को चला रहा है और खुद आराम से गधा पे बैठा हुआ है। तो ये सोचते चलो दोनों बैठ जाते हैं, सारे बोलते रहे ये पिता पुत्र तो बहुत क्रूर है, बेचारे गधे पे देखो बैठ के चले जा रहे। फिर ये सोचते चलो गधे को उठा लेते, तो दोनों जो है लकड़ी पे गधे को बांध के उठाते चले जाते हैं। अरे ये बोलते देखो ये पिता पुत्र तो बहुत मूर्ख है, गधा तो बैठने के लिए होता है, गधा तो उठाने की चीज नहीं है। ये है समाज के लोग, आप कुछ भी करो, आप अगर मंदिर जाओगे तो बोलेगा अरे लोग बहुत ज्यादा मंदिर जाते हैं, पाप करते हैं तो जाते हैं, पाप करने वाले जाते हैं, मंडे टू सैटरडे पाप करेंगे, संडे इस्कॉन मंदिर चले जाएंगे। या तो बोलेंगे ये लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, अरे मंदिर तो हम भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि रोज मुंह उठा के चले दिए, छुट्टी है तो मंदिर चले जाओ, फ्रेंडशिप डे है तो मंदिर चले जाओ, ये है तो मंदिर चले जाओ, ये क्या है, अरे अपना कुटुंब है, परिवार है, बच्चे है, देखिए जॉब है, ये क्या रोज रोज मंदिर चला जाना। तो ये तो समाज के लोग तो ऐसे ही है, तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, वो कभी एंकरेज नहीं करेंगे आपको भक्ति जीवन में, नहीं करेंगे एंकरेज। तो हमें निरुत्साहित नहीं होना है, ये ऐसा बोल रहा है तो अब मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं क्या भक्ति करना, ये ऐसा बोल रहा है तो नहीं, हमें हमारी भक्ति करनी है, हमें आगे चलना है। हमारे जो सीनियर वैष्णव है उनसे हम शेयर कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप पूछोगे माता जी आपने तो बोला प्रदर्शन नहीं करना है, तो क्या हम सीनियर डिवोटीज से भी ना बोले कि प्रभु जी हम ये व्रत करना चाह रहे हैं या हम ये करना नहीं, कह सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं कि आप मुझे ब्लेस करिए, मैं ये सही दिशा में करूँ। हमारा उद्देश्य क्या है किसी को बताना, हम उनसे टिप्स लेना चाहते हैं, उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये सही बात है, या हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, तो ये गलत बात है, है ना। तो समाज के लोग का तो कोई ठीक नहीं, और सारे अगर समुद्र में खुद जाएंगे तो क्या हम खुद जाएंगे, नहीं, हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। नहीं सब बोल रहे हैं ऐसा करना है तो करना है, सब ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, नहीं। कुछ सालों पहले CMR के जो कंपनी है, CMR का जो मॉल है, उन्होंने मिट्टी बेची थी, मिट्टी बेचने के लिए नहीं लाए थे वो, ट्रक में कहीं ले जा रहे थे तो किसी ने थोड़ा सा मांगा कि भैया कहाँ जा रहे हैं, अच्छी वाली मिट्टी जो पौधों के लिए अच्छी होती है, उनके नर्सरी के लिए ले जा रहे थे, तो किसी ने मांगा है तो थोड़ा सा प्लास्टिक में डाल दिया, तो फिर दूसरे ने देखा कि ये क्या ले रहा है तो मुझे भी लेना है, तो तीसरे ने देखा, तो चौथा ने देखा, तो रास्ते के बीच में वो लोग मिट्टी बेचे हैं। अब इमेजिन करिए उसमें कुछ नहीं है, एक आदमी ले रहा है तो दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, चौथे ने देखा, पांच जने वहां जमा हो गए, तो दूसरों को लगा समथिंग स्पेशल यहाँ पे सेल करे तो मुझे भी खरीदना है, और देखते देखते पूरा ट्रक उन्होंने मिट्टी बेचा। ऐसे भी विशाखापट्टनम के लोगों को CMR से और समुद्र से विशेष प्रेम है। CMR अगर गोबर भी बेचे तो ले लेते, बोलते पवित्र है गोबर दिया, एक ये है उनके बहुत ज्यादा फेथ है उसके ऊपर में। तो ये हमारा एक साधारण सा स्वभाव है, बस सब लोग जो कर रहे हैं तो बस हमें करना ही है, वो अच्छा हो ना हो, कितने लोग वो कर रहे हैं बस हम काउंट करते हैं। कोई प्रवचन नहीं, हम तो देख फेसबुक में या आपके यूट्यूब में अगर किसी को बहुत सारे लाइक हो तो वो देखना है, क्या है पता नहीं है, बहुत सारे जनों ने क्लिक कर दे तो कुछ अच्छा ही होगा, इसमें बहुत सारे व्यूज है तो कुछ अच्छा ही होगा, एक मेंटालिटी है, अपना डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या करते हैं, वो सरल मार्ग लगता है, वो इजी लगता है, फॉलो करना बहुत इजी लगता है। एक कहानी है कि एक आदमी जो बहुत ज़्यादा पीता है, शराब पीता है, उसे एक साधु बोलते हैं कि भाई तुम शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि शराब पियोगे तो नरक में जाओगे, शराब पीना पाप है। तो वो बहुत प्यार से पूछता है, साधु जी आप बोलते हो शराब पीने से नरक में जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई भी शराब पीता है। तो बोला कोई भी, वो भी नरक में जाएगा। फिर मेरे पिताजी भी शराब पीते हैं, तो वो भी नरक में जाएगा। बोलते हमारे घर के सामने जो वेश्या रहती है वो भी शराब पीती है, तो वो भी नरक में जाएगा। तो ये बोलता है कि भाई सब लोग नरक में जाएंगे तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा, मेरा उधर क्या काम है, फिर तो मैं शराब कभी नहीं छोड़ूंगा, जब सारे नरक की ओर जा रहे तो मैं तो अकेला बोर हो जाऊंगा ना स्वर्ग में, मैं भी जलता हूँ नरक में। ये हमारी मेंटालिटी है, ये हमारी मेंटालिटी है। इसीलिए तो शीला प्रभुपाद जी विदेश में जाके प्रचार करके उनके सफेद हाथी को, व्हाइट एलिफेंट को यहाँ ले आए, भारत में विदेशी भक्तों को ले आए, तब जाके हम लोग भक्ति को अपनाए हैं, है ना। कि हमें चाहिए कि कौन क्या, एक एग्जाम्पल चाहिए या किसी का फॉलो करना है, अपने आप से हम नहीं समझ पाते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो गुहा है, निषाद राज है, उन्होंने बोला कि क्या आप राम को मारने के लिए आए हो, क्या राम को हानि पहुँचाने के लिए आए हो। तब वो कहता है कि नहीं, मैं श्री राम को मनाने के लिए आया हूँ। तो बिल्कुल निरुत्साह नहीं हुए और आगे चलने के लिए तैयार हुए। तो निषाद राज के पास जब जिस दिन रात को रुके थे, तो निषाद राज ने भरत महाराज को बोला कि चलो हमारे महल में, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा बिस्तर तैयार कर दूंगा, आप विश्राम करिए। तो भरत महाराज बोलते नहीं, श्री राम कैसे सोए थे, मैं भी वैसे ही सोऊंगा। फिर निषादराज उनको ले जाते हैं, वो झाड़ दिखाते हैं जहाँ पे सीताराम रात को सोए थे। निषादराज उनको दिखाते हैं कि कैसे सूखी घास का बिस्तर बना के श्री राम जी और सीता जी ने वहाँ विश्राम किया था। तो भरत जी बहुत रोते हैं वो दृश्य देख के, इतना सुकोमल शरीर, इतने ऐशो आराम से जिए हुए मेरे भाई को आज ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, वो भी मेरे वजह से। दूसरे दिन प्रातः उठ के भरत महाराज थोड़ा और आगे जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत महाराज आते हैं तब भरद्वाज मुनि खूब ही प्रसन्न होते हैं और फिर वो भरत महाराज को बोलते हैं कि आज मेरे बहुत बड़े प्रश्न का मुझे जवाब मिल गया। तो भरत महाराज बोलते कौन से प्रश्न का? तो भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो तो उसका फल है भगवान का दर्शन प्राप्त होना। जब भगवान का दर्शन प्राप्त करो तो उसका फल क्या है? तो वो आज मुझे पता चला कि भगवान की भक्ति करने से भगवान का दर्शन होता है और भगवान का दर्शन करने से संत का दर्शन होता है, भक्त का दर्शन होता है। तो क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन मिला इसलिए उसके प्रतिफल, उसका रिजल्ट मुझे आपका दर्शन मिला जो सबसे रेयर है। मैं भगवान का भी दर्शन करना आसान है लेकिन भगवान के भक्तों को मिलना बहुत ही कठिन है। तो बहुत खुश हो जाते हैं कि आप जैसे एक भक्त मेरे आश्रम में आए। प्राय सब भक्तों को बहुत आश्चर्य लगता है कि आप कोई भी इस्कॉन के प्रवचन सुनो या क्लास सुनो, वैष्णव सेवा, वैष्णव कृपा, वैष्णवों के बारे में बहुत बोला जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत अगर आप पढ़ो तो वहाँ हर जगह ये बताया गया है कि कोई भी भक्त को जब भगवान प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए तो वो एक ही चीज़ मांगते हैं, हमें भक्तों का संग चाहिए। कितना आश्चर्य लगता है जब पहली बार कोई पढ़ेगा तो लगेगा ये क्या है, आपके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और आप भगवान को मांग रहे हो कि मुझे भक्त का संग चाहिए। क्यों ऐसा मांगते हैं? भगवान से ऐसा क्यों नहीं मांगते कि आप सब समय हमारे सामने रहिए या आपका संग चाहिए? ऐसा आप एक भी दिखा दीजिए भागवत में, कोई भी भक्त ने मांगा कि मुझे भगवान का संग चाहिए। भक्त का संग मांगेंगे क्यों? क्या ऐसी क्या बात है कि भक्त का संग मांगते हैं? क्यों मांगते हैं? क्योंकि भक्त के संग में भगवान को हम प्यार कर सकते हैं, भक्त के संग में भगवान को हम नहीं भूलेंगे, भगवान के संग में भगवान को हम भूल सकते हैं। अब आप ये बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के संग में भगवान को कैसे भूलेंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। संडे को मंदिर आते हैं, राधा दामोदर के सामने खड़ा रहते हैं। राधा दामोदर के सामने जब आप खड़े रहोगे ज़रूरी नहीं है कि आप राधा दामोदर के बारे में ही सोचो, आप किसी भी भक्त के बारे में सोच सकते हो, आप उस मोमेंट कुछ भी सोच सकते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है, आप ये भी सोच सकते हो कि भाई लाइट कम है, आप ये भी सोच सकते हो कि घर जाके मुझे ये बनाना है, मैंने पानी में छोले भिजाए कि नहीं भिजाए, कहीं मटर भिजाए नहीं भिजाए, कुछ भी सोच सकते हो, है कि नहीं? लेकिन आप कभी भक्तों के संग में रहो और भगवान की कथा सुनो, आपको और कुछ भी याद नहीं आएगा, आप सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचोगे। सच है कि नहीं? होता है कि नहीं? जब भगवान की कथा सुनते तो क्या होता है, और मन कहीं लगेगा ही नहीं, कौन सा मच्छर काट रहा है, क्या है, कुछ नहीं, बस आप सुन रहे हो, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ठाकुर जी ने ऐसी लीला की, ऐसी लीला की, है ना? और दूसरा बात यह भी है कि भगवान जो है बहुत चंचल है, वो एक मिनट आपके पास है तो दूसरे मिनट आपका हाथ छोड़ के चले भी जा सकते हैं। तो उस समय हम क्या करें, किसकी शरणागत ले? जब भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे, भक्त हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, भक्त का शरणागति हम ले सकते हैं, भक्त का संग हम कर सकते हैं। भगवान तो आएंगे कभी कभी चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, वो तो चंचल है ना? सूरदास जी अंधे थे, सूरदास के बारे में जानते हैं ना, वो अंधे थे। तो और भगवान का नाम लेते लेते बस अपने आप से अपने मस्त मगन रहते थे वो। तो एक दिन कीर्तन करते 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 वो चलते 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 कुएं में गिर गए। अंधे थे तो उनको दिखाई नहीं देता है कि कुआं है रास्ते में, क्या है, तो कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो उनको कौन निकालेगा कुएं से बाहर, किसी को पता भी नहीं, सब आते जाते चले जा रहे हैं। तो ठाकुर जी को दया आ गई तो उन्होंने कुएं के अंदर गए, सूरदास जी का हाथ पकड़ा, उन्हें कुएं से बाहर निकाला। तो जैसे ही ठाकुर जी 7 साल के छोटे बच्चे के रूप में आए थे, तो जैसे ही ठाकुर जी का हाथ पकड़ा तो सूरदास तो बहुत बड़े भक्त है, तो हाथ छू के बोलने लगे कि कौन है ये, कौन है, क्या ये श्याम है, क्या तुम हो कृष्ण, क्या ये तुम हो, कौन, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो भगवान ने हंस दिया और हाथ छोड़ के चले गए। तो सूरदास जी तो अब अंधे है, तो पता नहीं है कि किस दिशा में जाऊं और कैसे उसको पकड़ूं। तो भगवान के बारे में सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद, तभी का तभी एक सुंदर पद बनाते हैं। भगवान को बोलते हैं कि भाई तुम इस गेम में फेयर नहीं हो, गेम तो ऐसा होना चाहिए जब दोनों पार्टी बराबर के हो। तुम यंग हो, युवक हो, एकदम शक्ति है, तुम भाग सकते हो, मैं तो बूढ़ा हूँ, तो मेरे साथ तुम रेस करोगे, मैं तुमको कैसे पकड़ूंगा। तो तुम अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हो कि तुम हाथ छुड़ा के मेरे पास से चले गए, ठीक है, ये तो गेम फेयर नहीं है। अगर तुम अपने आप को इतना ही स्मार्ट समझते हो, इतना ही तुम अपने आप को चतुर समझते हो, तो मेरे हृदय से तुम भाग के दिखाओ, जहाँ पे मैंने तुमको बांध के रखा है वहां से तुम नहीं निकल पाओगे। आई बात समझ में? आई, बहुत सुंदर गाते हैं। बोलते हैं, हाथ छुड़ाई के जाई रहे हो, हाथ छुड़ाई के, हाथ छोड़ के जा रहे हो, जाई रहे हो, हृदय से जाओ तो मानू, हृदय से जाओ तो मानू, हृदय से जाओ, मेरे हृदय से जाओ तब मानते हैं। कितने चतुर है, आप नहीं जा पाओगे, मैंने आपको बांध के रख लिया है। तो भगवान तो बहुत चंचल है, कब हाथ छोड़ के चले जाएंगे पता नहीं, लेकिन भक्तों की शरणागति तो हम हमेशा ले सकते हैं। इसलिए मैं भक्तों का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए हर भक्त भक्तों का संग मांगते हैं। तो यहाँ हमारे रामायण की कथा में हम वापस आते हैं। तो यहाँ निषाद राज उनको भगवान का बिस्तर दिखाते हैं, ये रोते हैं, आगे भरद्वाज मुनि के पास जाते हैं और भरद्वाज मुनि प्रशंसा करते कि मुझे आप जैसे भक्त का संग मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर भरद्वाज मुनि उनको आगे का रास्ता बताते हैं, उनको पूछते हैं कि भरत महाराज पूछते हैं कि कहाँ गए श्री राम। सब भरद्वाज मुनि उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने, भरद्वाज मुनि बताते हैं कि कैसे श्री राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ, जब वो वनवास के लिए आए तो बोले मैं कहाँ जाऊँ, तो भरद्वाज मुनि को हंसी आ गई कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाके रहूँ। तो भरद्वाज मुनि ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ नहीं हो, आप कहाँ नहीं हो वो बताइए, तो हम बताएंगे कि आप कहाँ जाके रहेंगे। तो भगवान हंस के उनको इशारा कर रहे हैं कि भैया तुम ये फिलॉसफी छोड़ो, इस लीला में मेरे को बताओ मैं कहाँ जाके रहना। तो उनको जो है 14 जगह बताते हैं भरद्वाज मुनि जी, कहाँ आप जाके रह सकते हो। तो या जहाँ भगवान आपकी भक्ति होती है वहाँ आप रहो, जहाँ कानों से भगवान की लीला सुनते हैं उन लोगों के घर जाके रहो, जो आँखों से आपका दर्शन करते हैं, जो जीभा से आपका प्रसाद का स्वाद कर खाते हैं, जो अपने पैरों को तीर्थ यात्रा जाने के लिए उपयोग करते हैं, जिनका मस्तक गुरु के चरण कमलों में झुकता है, जिसको आपके सिवाय और कोई शरण गति नहीं है, ऐसे अलग 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 जगह जो गायों की रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त के घर में आप जाके रहो। तो फिर भगवान आगे चलते हैं और हमारी कहानी में यहाँ भरत महाराज भी आगे चलते हैं। जैसे भरत महाराज आगे जाते हैं, भरद्वाज मुनि उन्हें रोकते हैं, उन्हें कहते हैं कि देखिए आप थक चुके हैं, बहुत थकान हो गई है, आप 1-2 दिन यहाँ आराम करिए। तो भरत महाराज को तो आराम नहीं करना है, बट उनके साथ में जो आए हैं वो सब बहुत वृद्ध है, थके हुए हैं। तो अब भरद्वाज मुनि रहते थे बहुत ही एक साधारण सी कुटिया में, लेकिन ये ऋषि और मुनि लोगों को इतनी सिद्धि थी, अगर वो चाहे तो एक संकल्प मात्र से बहुत सारी चीज़ों की सृष्टि कर सकते हैं। तो भरद्वाज मुनि को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने लोग जो आए थे उनके लिए वो इमीडिएटली हर एक चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई अच्छा सा बिस्तर, अच्छा सा भवन, अच्छा सा खाने की वस्तुएं, नौकर चाकर, सेवाओं के लिए विभिन्न पानी और बहुत अलग अलग चीज़ों का, जो एकदम अच्छा से उनका स्वागत करने के लिए, उनके रहने के लिए सब सही से इंतज़ाम करते हैं। तो भारद्वाज मुनि का जो इंतजाम होता है, उनकी जो अरेंजमेंट्स होती है, जो व्यवस्था होती है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। तो अयोध्या से जो साधारण नागरिक आए हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है, एकदम कंफर्टेबल, कि वो बोलते हैं कि ना हमें पीछे अयोध्या मुड़ के जाना है, ना हमें आगे चित्रकूट जाना है, बस हम यहीं रह जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आनंद आ रहा है, इतना अच्छा खाना, इतना सुगंधित पदार्थ, और स्वर्ग से भी बहुत सारे अफसर आए हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। भरत महाराज कोई सेवा नहीं लेते हैं, वो उसी झाड़ के नीचे राम 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 करके बैठते हैं, और बहुत ही साधारण तरीके से रहते हैं। तो यहाँ एक सीखने का, एक अच्छी शिक्षा हमें ये मिलती है कि माया अलग अलग तरीके से हमें लुभाने की कोशिश करेगी। हम भक्ति जीवन में आएंगे तभी भी उसके पास बहुत सारे तरीके हैं। कभी हमें अच्छा पद दे के लुभा सकती है कि भाई तुम यहाँ के ये बन जाओ, या तुम बड़े पदवी में आ जाओ, या कभी कुछ और, कभी कुछ और हमें आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन हमें हमारा फोकस लूज नहीं करना है। सारे डगमग हो गए, लेकिन भरत महाराज ने अपना फोकस लूज नहीं किया। उन्होंने याद रखा कि मैं यहाँ आया हूँ राम से मिलने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। हमारी भक्ति जीवन में भी हम जब नए नए आते हैं तब हमारा फोकस सही रहता है, लेकिन डाउन द लाइन जैसे कुछ साल चले जाते हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं कि मैं आया किस लिए यहाँ पे। होता है कि नहीं? जब आप शुरू में आते हो आपको लगता है कि यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, सब बहुत पवित्र हैं, सब कितने महान हैं, मैं ही एक बुद्धू हूँ। थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, लगता है ये सब बेकार है, मैं ही शुद्ध भक्त हूँ। ऐसा होता है ना, ओवर द टाइम ईगो आ जाता है, फिर हम भूल ही जाते हैं कि भाई मैं आया था किस लिए इस कौन में। मैं तो आया था यहाँ भक्ति सीखने के लिए, यहाँ किसी का दोष देखने के लिए या किसी को सुधारने के लिए मैं नहीं आया था। मेरा काम किसी को सुधारना नहीं है, मेरी काम है मेरे आत्मा का लाभ दिखना, मेरे आत्मा को सुधारना, है ना। कुछ बच्चे लोग एक अपार्टमेंट में के नीचे क्रिकेट खेलते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल करना, एकदम अपार्टमेंट वाले सब थक गए कि बच्चों को कितना भी बोले सुनते नहीं है बात। तो उस अपार्टमेंट में एक नया किराएदार आया, उसने बोला बस इतनी सी बात है, मैं दो चार दिन में इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो ये लोग सब हंसने लगे, बोला हो ही नहीं सकता ऐसा। तो क्यों नहीं हो सकता? बोलते मानेंगे ही नहीं बच्चे, बोलते पक्का मानेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत चतुर था, वो एक दिन नीचे गया, शाम को बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे, किसी का खिड़की तोड़ रहे तो किसी का दरवाज़ा, तो इस आदमी ने जाके सारे बच्चों को बोले आ जाओ इधर आ जाओ, बोले लो तुम 100 रुपये लो और तुम सब जाके कुछ आइसक्रीम खा लो। बोले किस लिए दे रहे हैं आप ये पैसा हमको? तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो अब जवान नहीं हूँ, कम से कम आपको देख के मुझे आनंद आ रहा है कि चलो। तो मेरे लिए आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं रोज़ आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन आप यहीं क्रिकेट खेलना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे लोग पहले तो थोड़ा संकोच किया कि क्यों ले, फिर लगा ठीक है बेवकूफ़ आदमी है, देने तो हमको क्या है। दूसरा दिन फिर गए, फिर इसने 100 रुपये दिया, तीसरा दिन गए 100 रुपये दिया, चौथा दिन गए, उसने बोला मेरे पास आज पैसा चेंज नहीं है 50 रुपये। तो बच्चे लोग बोले देखो एक तो तुम्हारे लिए हम क्रिकेट खेल रहे, तुमको खुशी देने के लिए, ठीक है आज हम लोग एडजस्ट करें, लेकिन देखो तुम ऐसा 50 रुपये ऐसा दोगे तो फिर हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, हम 100 रुपये हमको कंपल्सरी चाहिए। फिर तीसरा दिन गया, वो लोग चेंज नहीं है 10 रुपये, बोले ये क्या हो रहा है? तो नहीं नहीं मेरे पास चेंज नहीं है। तो इस बार बच्चों को गुस्सा आ गया, बोले ये पकड़ो तुम्हारा 10 रुपये, हम जा रहे हैं, हमको नहीं खेलना है क्रिकेट, हम नहीं खेलेंगे इधर। क्या सोचते हो, हम इतना सस्ता सोचते हो, 10 रुपये में हम क्रिकेट खेलेंगे? हमको नहीं खेलना है, इसका काम हो गया। हम जब नए नए आते हैं इस कौन में, हमको क्या लगता है मैं इसकी सेवा करें, हम ये करें, हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए। हमारा मेन, हम भक्ति करते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है, हम आरती में आते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है, हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है। और कुछ साल के बाद हम क्या सोचते हैं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा ये सेवा, ये मेरा का, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला? अरे तुमको क्या है उसने क्या बोला, तुम किस लिए आ रहे हो? तुम अपने आनंद के लिए सेवा कर रहे हो, तुम किसी के लिए नहीं कर रहे हो। पर हम भूल जाते हैं, हम भूल के गलत मार्ग में चला, नहीं मुझे अगर ये पदवी नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगा सेवा, मुझे ये नहीं, मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैं क्यों माने तुम्हारी बात? तुम्हारी बात मनवाने के लिए तो तुम नहीं आए हो ना मंदिर में, तुम तो भक्ति करने आए हो, तुम इसीलिए थोड़ी आए थे कि मेरी बात सबको माननी है इसीलिए मैं इस्कॉन में आ रहा हूँ या इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। ओवर द टाइम हम फोकस लूज कर देते हैं, हम भूल ही जाते हैं हम किस लिए आए हैं मंदिर में। यहाँ भी सब भूल गए, किस लिए आए थे भूल गए, भगवान को मिलने के लिए आए थे। तो कुछ दिनों के बाद भरत महाराज ने उन्हें बताया भी चलो हम किस लिए आए, हमें और आगे जाना है, चलिए निकलते हैं। तो फिर सब जो है भरत महाराज के साथ आगे आगे चल दिए। कुछ रामायण के वर्जन में लिखा है कि वो कुछ वहीं रह गए और भरत महाराज आगे निकल पड़े, कि इतना आनंद आ रहा था कि बस उनको और कुछ याद नहीं आ रहा था। भरत महाराज और आगे गए, जैसे वो और आगे जा रहे थे तो इंद्र जो है उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा हवा। अब इंद्र उनको क्यों तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इंद्र सोच रहा था कि अगर भरत महाराज सक्सेसफुली राम के पास चले गए और राम को मना लिया और राम को वापस लेके चले गए अयोध्या, तो हमारा तो पूरा मेहनत पानी में चली जाएगी। हम जो इतना मेहनत किए हैं, भगवान को रिक्वेस्ट किए कि आप राम के रूप में आइए, रावण का संहार करिए, तो ये सब हमारी मेहनत तो चली जाएगी, तो भरत को हम जाने ही नहीं देंगे। तो उसको अलग अलग तरीके से उसको कष्ट देना आरंभ किया। फिर बृहस्पति आते हैं, बृहस्पति आके इंद्र को समझाते हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, राम नहीं मानेंगे, भरत वापस चला जाएगा, तुम ये बारिश गिराना ये सब तुम बंद करो। तो फिर ये बंद कर देते हैं इंद्र। इससे हमें सीखने लायक शिक्षा ये है कि जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हमने जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, वो सब अवरोधन के रूप में आते हैं। अब आप सोचेंगे पाप किए हैं अवरोधन के रूप में आते हैं, ठीक है, पुण्य कैसे आएंगे, पुण्य कैसे आएंगे अवरोधन के रूप में, पुण्य भी आते हैं। अगर आपने बहुत पुण्य किया है तो आपके आसपास में बहुत ज़्यादा लग्जरी होगी, बहुत ज़्यादा लग्जरी होगी तो आप भगवान से दूर हो जाएंगे, है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुंती देवी क्या बोलती है, कुंती देवी क्या बोलती है, चाहिए ये सब मुझे, आप चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, बुद्धि होती है, सौंदर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, अच्छी नामी परिवार में जन्म लेते हैं, उन्हें अभिमान आ जाता है और फिर अभिमान उनको भगवान से दूर कर देता है, है ना। आपको पता है शबरी माता अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही अमीर घर की राजकुमारी थी और उन्हें भगवान की बहुत भक्ति थी, लेकिन वो कभी कहीं जा नहीं पाती थी क्योंकि वो राजकुमारी थी, तो हमेशा पलकी में जो है उसको लेके घूमते थे और वो जहाँ जाओ तो वहाँ कर्फ्यू हो जाता था, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। एक बार सबरी माता अपने पूर्व जन्म में प्रयाग गई थी गंगा में स्नान करने के लिए कुंभ मेला के टाइम पे। तो कुंभ में जाना, प्रयाग में स्नान करना, ये तो बहाना था, उनकी इच्छा थी कि जब मैं वहाँ जा रही हूँ तो साधुओं से मिलूँगी, उनकी बातें सुनूंगी, हाँ उनकी चरण रज को अपने सिर पे धारण करूँगी। लेकिन जब वो आई तो सारे साधुओं को भी वहाँ से भगा दिया गया, जब भाई जगह करो, राजकुमारी आ रही है। तो सबरी माता अपने पालकी में बहुत रोई थी, बहुत रोई कि भगवान कम से कम अगले जन्म में ऐसा मेरे साथ ना हो, मैं कोई निम्न जाति के, कोई निम्न जगह में मेरा जन्म हो जहाँ मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जब उनके आने वाले जन्म में उनको सबर जाति में जन्म मिला, हम उनको बोलते हैं सबरी, सबरी उनका नाम नहीं है, वो सबरी जाति की है इसलिए हम उन्हें सबरी बोलते हैं। तो फिर उनको सबर जाति में जन्म मिला। तो ये सबर जाति वाले क्या करते थे, पशुओं का वध करके बलि देते थे। तो सबरी माता का जब विवाह होने वाला था, विवाह होने के पहली वाली रात को, विवाह होने से पहले वाले रात को वो अपने घर में घूम रही थी। तो जब वो घूम रही थी तो उसने देखा कि बहुत सारे जानवरों को बांधा हुआ है। तो उसने अपनी माता को पूछा कि भाई इतने सारे जानवरों को क्यों बांधा है, तो बोला कल तुम्हारा विवाह है तो ये सारे जानवरों को हम बलि दे देंगे। तो सबरी माता तो रोने लगी, मेरे विवाह के उपलक्ष्य में इतने सारे जानवरों को बलि देंगे, मुझे विवाह ही नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, रात्रि में जाके सारे जानवरों को खोल दिया। जब उन्होंने जानवरों को खोल दिया तब हर एक जानवर ने शबरी माता को आशीर्वाद दिया। हर एक जानवर ने शबरी माता से कहा कि जैसे तुमने ये रस्सी जो है निकाल के हमें मुक्ति दी है, वैसे ही ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो संसार चक्र की रस्सी है, उससे तुम मुक्ति पाओगी, ये हमारा आशीर्वाद है। तो शबरी माता ने सारे जानवरों को छोड़ दिया और वो भी भाग गई, तो डर गई थी। तो भागे के जाए कहाँ, तो वन में चली गई, सोची कि मैं वन में चली जाऊंगी, वहाँ भगवान की भक्ति करूँगी। तो वन में जब आई तो वहाँ भी वो किसी को जानती नहीं है, तो उसने देखा दूर से जो एक आश्रम है, मतंग मुनि का आश्रम था, तो मतंग मुनि के आश्रम के पास चली गई। अब जब उसने देखा अंदर में, तो वहाँ तो कोई लेडीज नहीं है, सब जेंट्स है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, सब ब्रह्मचारी सन्यासी मतंग मुनि प्रवचन दे रहे हैं। तो सबरी ने सोचा मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे ये लोग जगह देंगे कि नहीं, शरणागत देंगे कि नहीं। तो उसने क्या किया, एक झाड़ के नीचे रहना शुरू किया। और वो क्या करती थी, वो झाड़ के पास से देखती थी रोज कि ये लोग क्या करते हैं। तो उसने देखा कि ये लोग रोज सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं और आश्रम के आसपास की जगह को झाड़ू देते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और फिर जाके नदी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में आके गुरु की सेवा करते हैं। अब उसको लगा कि मुझे भी सेवा करनी है, तो कैसे सेवा करूँ। तो उसने सोचा ये लोग 3:30 बजे उठते हैं, तो मैं जो उसके पहले उठ जाऊँगी, मैं 2:30 को उठ जाऊँगी। तो ये लोग उठे उसके पहले, वो 2:30 को ही उठ के झाड़ू लेके पूरा आश्रम साफ कर देती। ये लोग जब उठते हैं, मतंग मुनि के शिष्य देखते हैं, अरे किसने आश्रम साफ कर दिया, इतना साफ सुथरा। और जब तक वो लोग स्नान करके आते हैं वापस, तब ये आश्रम के अंदर भी सब साफ कर देती, फूल तोड़ के रख देती, पूजा की सामग्री रेडी कर देती। तो ये बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है, सारे चले गए गुरु जी के पास। गुरु जी पता नहीं कौन है, कोई आता है सुबह सेवा करके चला जाता है, पूरा दिन दिखाई नहीं देता। और वो लोग प्रसाद लेने के बाद जो उच्चिष्ट जो बचा हुआ फेंक देते थे, शबरी माता वही खा लेती थी। तो गुरु जी ने बोला कि भाई ये तो सीरियस मामला है, सीरियस मामला है, कौन है जो हमारी सेवा कर रहा है और चला जा रहा है। ऐसा सुनने से हमको लगता है कि कहीं काश हमको भी ऐसे कोई काम वाली मिल जाए, बिना बोले आए करके चली जाए, फिर तो हमको, हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि ये सीरियस मामला है, लगेगा बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं, मतलब लेडीज को पहली बात तो यही याद आई होगी, अरे ऐसे में काम वाली महीना में 3-4 दिन छुट्टी, वो भी उसको रिक्वेस्ट करो। नहीं, पर देखो जो साधु लोग होते हैं उनकी हर बात के पीछे एक कारण है। मतंग मुनि के शिष्यों को भी ऐसा ही लगा कि क्या प्रॉब्लम है, गुरुजी अच्छा ही लग रहा है ना, कोई आ रहा है सेवा कर रहा है। तो मतंग मुनि ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, बोला देखो किसी से भी जब सेवा लेते हो तो दो चीज आपकी जाती है और एक चीज आती है। बोले क्या क्या जाता है, क्या जाता है हमारा, पर दो चीज जाती है। अब जब किसी से सेवा लेते हो तो आपकी भक्ति चली जाती है, चली जाती है मतलब आपकी भक्ति उनको जाती है, और आपकी सुकृति चली जाती है, आपने जो पूर्व जन्म में कमाए हुए पुण्य है, सुकृति है, उनको जाती है। और एक चीज आती है, क्या है, आसक्ति। उस पर्सन पे हमारी आसक्ति बढ़ जाती है ना, है कि नहीं, जो हमारी सेवा करते हैं उन पे हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। अगर थोड़े दिन के बाद उनको नहीं देख पाएंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमारी आसक्ति भगवान की ओर बढ़ाए, है ना, ना कि किसी और भक्त के प्रति बढ़ाए। तो तब जो है मतंग मुनि के शिष्य बहुत सीरियस हो गए, अरे फिर तो हमें रेड हैंड पकड़ना है, कौन है जो हमारी भक्ति और सुकृति छीन रहा है। तो दूसरा दिन क्या किया उन्होंने, रात को कोई नहीं सोए, बस पूरा रात सब सोने की एक्टिंग करते रहे, और फिर उन्होंने शबरी माता को रेड हैंड पकड़ लिया, कह रहे तुम चलो, तुम्हारा भी गुरुजी के पास हम तुमको लेके चलते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। फिर मतंग मुनि के पास शबरी माता आती है और अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे है, आप मुझे शरणागति दीजिए। मतंग मुनि उन्हें बहुत खुशी से स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तुम हमारे आश्रम में रह सकती हो और सेवा कर सकती हो। और जब मतंग मुनि अपने जीवन के शेष में, जब वैकुंठ से विमान आता है उनको लेने के लिए, तब अपने सारे शिष्यों के साथ वो चले जाते हैं, तब शबरी बोलती है मैं क्या करूँगी यहाँ रह के, मुझे भी ले चलिए गुरुजी। तब मतंग मुनि शबरी को बोलते हैं, बोलते हे शबरी, तुमने बहुत गुरु की सेवा की है और गुरु की सेवा करने के प्रतिफल के रूप में भगवान खुद आएंगे। मैं तो भगवान के पास में जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हें ढूंढते हुए भगवान आएंगे। तो ये है गुरु सेवा की महिमा, है ना। जब गुरु की कोई सेवा करता है, जब वैष्णवों की कोई सेवा करता है, तो उन पे भगवान की विशेष कृपा होती है। पिछले हफ्ते ही हम बता रहे थे कि जैसे हम जब इस्कॉन में आते हैं, हम चार नियमों का पालन करते हैं, हम माला करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब ठीक है। जैसे हम आए हैं, पाप कर्म छोड़ दिया है, मतलब हमने गोलोक एक्सप्रेस में टिकट काट लिया है, हम गोलोक वृंदावन का टिकट हमको मिल गया है। लेकिन टिकट काटने से ही वो कंफर्म हो जाता है, वैसा तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो लोग गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं, उनका क्या होता है, इमरजेंसी कोटा में उनका टिकट कंफर्म हो जाता है, उनको इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो लोग भगवान के मंदिर निर्माण में सेवा देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनका क्या होता है, तत्काल में टिकट कन्फर्म हो जाता है कि नहीं। आप जानते हैं टिकट कन्फर्म करने के लिए हेडक्वार्टर कोटा, इमरजेंसी कोटा और तात्काल, तीन ही होता है। गुरु की सेवा करो तो हेडक्वार्टर कोटा, डोनेशन दो तो तात्काल कोटा, और पुरुषोत्तम मास करो, कार्तिक मास करो, ये व्रत करो, वो व्रत करो, तो इमरजेंसी कोटा, बाकी सब आरएससी में रह जाता है। अब कब वो आरएससी का कन्फर्म होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ टिकट तो है। जब सोलह माला करते हो, इस्कॉन में आते हो, प्रोपा जी को मानते हो, तो टिकट तो आपका है, बस कंफर्म करवाना है, उसको कंफर्म करवाना है, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतंग मुनि ने सबरी को बोला कि तुमने गुरु की सेवा की है, भगवान खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी खुद आएंगे तुम्हें देखने के लिए। और ठाकुर जी आते भी है, हम जानते हैं कैसे ठाकुर जी आते हैं, बड़े प्रेम से सबरी के दिए हुए जूठे बैर भी खाते हैं। आपको पता है जब ये जूठे बैर भगवान खाते हैं, तब लक्ष्मण नहीं खाता है, आपको पता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको जब देते वो फेंक देता है। और कई सालों के बाद जब अयोध्या में युद्ध हो गया, राम का राज्याभिषेक हो गया, तो एक दिन लक्ष्मण जो है बहुत विचार से बैठे हुए हैं, तो राम जी उनको पूछते हैं कि भाई क्या विचार कर रहे हो इतना ज़्यादा। तो बोलते नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ, हम लोग का जन्म साथ साथ में ही हुआ, बस कुछ घंटों की डिफरेंस थी, हम लोग एक साथ में गुरुकुल गए, एक साथ में शादी हुआ, एक साथ में वनवास में गए, हर एक चीज़ हम लोग एक साथ में की, ऐसा कुछ नहीं कि आपने अलग किया या मैंने अलग किया, लेकिन फिर मेघनाथ के बाण से मैं मूर्छित हुआ, आप क्यों मूर्छित नहीं हुए। तो राम ने बोला कि मैं आज तुमको सीक्रेट बताता हूँ कि मैं क्यों, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ। तो ठाकुर जी ने बोला, तुम्हें याद है हम लोग सबरी के घर गए थे, कहाँ गए थे, उसने जूठे बैर दिए थे, हाँ दिए थे, और तुमने नहीं खाए थे, हाँ मैंने नहीं खाए थे। भगवान ने बोला, वो जो बैर थे वो साधारण बैर नहीं थे, वो जड़ी बूटी का काम करते थे, तो वो जो बैर मैंने खा लिए थे इसलिए मैं मूर्छित नहीं हुआ, तुमने नहीं खाए थे इसलिए तुम मूर्छित हुए, और वो जो बैर लक्ष्मण फेंकता रहा, उस बैर से जो संजीवनी जो बनी है, उसको फिर हनुमान लेके आए थे लक्ष्मण को देने के लिए। तो फिर भगवान ने बोलते, क्योंकि तुमने नहीं खाए। तो देखो, भगवान की हर लीला में एक मीनिंग होता है, अगर लक्ष्मण ने तब बैर खा लिए होते तो उस मूर्छा नहीं होती थी। और भगवान के भक्तों की महिमा गान करने के लिए भी भगवान ऐसा आयोजन करते हैं कि मेरे भक्तों की महिमा जानो। जब भगवान शबरी के पास जाते हैं और ये बैर खाते हैं, तो दूसरे जो आसपास के ऋषि मुनि हैं, उन्हें बहुत ईर्ष्या हो जाती है, तो इतना तो क्या, मतलब उसके जूठे बैर तक भगवान ने खा लिया और हमारे आश्रम में भी नहीं आए, ये तो भगवान है ही नहीं, जो भगवान है वो ऐसा थोड़ी करता है, भगवान को तो आप नैवेद्य दो, चांदी के प्लेट में भजन गाओ, कितना कुछ करना पड़ता, तब जाके तो वो लेते, जूठे बैर थोड़ी खाते हैं। तो बोले, आप भगवान है ही नहीं, भगवान को चैलेंज कर दिया। और फिर लक्ष्मण तो और भी गुस्सा हो गए, क्या बोल रहे हो, तो अगर ये भगवान है तो इनको बोलो यहाँ पे जो ये छोटी सी नदी बह रही है, ये एकदम मैली नदी है, अपने स्पर्श से इसको अच्छा बना दे। तो भगवान ने बोला, पर मैं कब बोल रहा हूँ कि मैं भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं चलता हूँ आगे। तो लक्ष्मण ने बोला, अरे उनको क्या पूछते हो, मैं पैर टच करूँगा तो भी ये जो है मैली नदी अच्छी बन जाएगी। बोला ठीक है करो। तो लक्ष्मण जी ने जो है अपना पैर उस नदी के अंदर डाला, नदी कुछ नहीं हुआ, जैसी मैली थी वैसी रह गई। तो लक्ष्मण जी ने बोला राम जी को, भाई आप पैर डालो। तो राम जी ने बोला मैं तो पहले ही बोला मैं भगवान नहीं हूं, मैं चलता हूं। लक्ष्मण जी ने बोला भगत का सवाल है, ऐसा मत करें, थोड़ा सा पैर डाल दीजिए प्लीज। ठीक है, बोला राम जी ने पैर डाला, कुछ नहीं हुआ। फिर राम जी ने, मैंने पहले ही बोला था मैं कुछ नहीं। वहाँ भी जो साधु लोग थे बोला रही है, तो देखा हम पहले ही बोले थे आप लोग भगवान नहीं। तो लक्ष्मण ने बोला ठीक है, तुम लोग तो साधु हो ना, तुम इतने सालों से जब तुम डाल के देखो। ठीक है, हम सब मंत्र तंत्र सब इतना मंत्र की और मैली नदी और भी मैली हो गई, एकदम लाल लाल हो गई, एकदम गंदी हो गई। बोले अरे रे रे। तो फिर राम जी ने बोला कि अरे अगर शबरी माता जिंदा होती, क्योंकि जैसे ही श्री राम निकले वहाँ से, शबरी माता श्री राम के सामने ही वो अग्नि का कुंड बनाया और उन्होंने प्रवेश करके अपना देह त्याग कर दिया था श्री राम जी के सामने ही। श्री राम बोले अगर शबरी माता होती तो ऐसे ही उस मैली नदी को मतलब जो है पवित्र कर देती। तो ये साधुओं ने बोला अब तो आप ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि वो नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं। बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। बोले कैसे करेंगे? बोला शबरी माता जहाँ पे खड़ी होती है ना, मट्टी पे खड़ी होके वो बैर चुनती है या फूल चुनती है, उनकी पा की जो मुद्रा बनी रहती है मट्टी में, वहाँ से थोड़ा सा धूल लेके आ जाओ, ये वो डाल दो, ये नदी पवित्र हो जाएगी। तो शबरी माता के पैरों की धूली लेके आके जब उन्होंने नदी में डाली तो एकदम नदी पवित्र हो गई। तो आप क्या सोचते हो ये वृत्तांत से कि भगवान के पैर डालने से नदी पवित्र नहीं होगी? होगी ना। तो भगवान ऐसे क्यों करते हैं? अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि देखिए मेरे भक्त बहुत महान है, मेरे भक्त मुझसे भी महान है। देखो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे क्या भगवान को झूठा बैर कितने भी, पर अगर आप फिलोसफिकली भी देखो तो शबरी तो भगवान को झूठा बैर खिलाई नहीं है, नहीं खिलाई है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप राम का नाम लो तो क्या होता है, राम आपकी जिह्वा में नृत्य करते हैं, है कि नहीं? बोलो राम, मतलब भगवान हमारे जिह्वा पे है। तो शबरी तो सतत कंटिन्यूसली राम 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 बोलती थी, है कि नहीं? तो जब वो राम राम बोलती थी मतलब उसकी जिह्वा में राम भगवान है। उसका मतलब जब उसने बैर खाया तो अंदर से किसने खाया, फिर झूठा कहाँ से हुआ? राम का खाया हुआ बैर उसने राम को खिलाया तो फिर झूठा कहाँ हुआ, है ना? हमारे गुजरातियों में बहुत सुंदर भजन गाते हैं इस सबरी माता का, बोलते सबरी ये बेर कदी चाख्या न था, इन्हें तो अंदर थी चाख्या था राम, ने अंदर थी चाख्या था राम अलापाट दे सिंग लाइक दिस। बोलते कि सबरी माता ने कब झूठा किया, उसको तो अंदर से चखा था राम को, राम ने चखा था, तो राम के चखे हुए बैर राम को खिलाए। भक्त लोग तो कभी अपराध कर ही नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है। शास्त्र में क्या बोला गया है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्न ना बुझाए। जो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना, स्कॉलरली पर्सन, वो भी नहीं समझ सकता एक वैष्णव के बारे में, वो क्यों सोता है, कहाँ सोता है, क्या खाता है, कब उठता है, क्या नहीं समझ पाएंगे। किसी भी वैष्णव को हम अगर देखते हैं हम नहीं समझ पाएंगे वो कितना अच्छा वैष्णव है, क्योंकि समझने के लिए वो चक्षु भी हमारे पास नहीं है, है ना? क्या एक छोटा बच्चा नहीं समझ सकता है कि PhD का एग्जाम कितना डिफिकल्ट है, राइट? पर जो एक PhD के टीचर है वो समझ सकते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है। हम लोग इतने नीचे के स्तर में हैं और फिर हम लोग बहुत बड़े बड़े भक्तों को क्या बोलते हैं टाइटल देने की कोशिश करते हैं, ये भक्त थोड़ा ऐसा है, ये भक्त थोड़ा वैसा है, लेकिन हमारी उतनी काबिलियत ही नहीं है कमेंट देने के लिए या उनको समझने के लिए भी कि वो क्यों ऐसा करते हैं या क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम जज करने की कोशिश करते हैं और फिर हम अपराध कर बैठते हैं और फिर हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, ना भक्ति करना अच्छा लगता है, ना जप में आनंद आता है, और धीरे धीरे भक्तों के संग से भी हम दूर हो जाते हैं। तो सबरी माता जो अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी थी, उनका भी दिल था कि नहीं भाई मैं ऐसे कोई परिवार में जन्म लूँ जहाँ से मैं भगवान को, मैं साधुओं को आसानी से संग कर पाऊँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारी कथा में, भरत महाराज की कथा में, जी वो जब आगे चले हैं और यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम गए हैं, उसके बाद में इंद्र जो है उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो पाप और पुण्य दोनों ही ठीक नहीं है। तो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हो माता जी जो अगर हम पुण्य करेंगे तो बहुत लग्जरी, बहुत ज़्यादा हमको भगवान से दूर कर सकते हैं, तो क्या हम पुण्य करना बंद कर दें, क्या करें फिर? नहीं, पुण्य तो करना ही है, पुण्य तो करना ही है, लेकिन पुण्य करने के बाद जब उसको हम कृष्ण को समर्पण कर देते हैं तब वो भक्ति बन जाती है ना। कुछ भी करो, आप अच्छा कर्म करो, लेकिन फिर उसको कृष्ण को समर्पण कर दो, फिर वो भक्ति बन जाती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, फिर तो हम पाप को भी भगवान को समर्पण कर देते हैं। नहीं, पाप भगवान को समर्पण नहीं हो सकता है, पुण्य हो सकता है। पाप और पुण्य से बचना है तो पुण्य को भगवान को समर्पण करो और पाप करना बंद करो बस। और ये पाप और पुण्य से जब परे होते हैं, भक्ति करते हैं, तभी भगवान के पास आ सकते हैं। भक्ति से ही भगवान को पाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं मैं भक्ति करूंगा तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा पाऊंगा। जो भक्ति नहीं करते हैं क्या वो पैसा नहीं कमाते? कमाते हैं ना, तभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अरे वो तो माला भी नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करता फिर भी इतने पैसे कमा रहा है। क्योंकि भक्ति से पैसे नहीं कमाया जा सकते, भक्ति नहीं करने से भी पैसा मिलेगा। ओहो, तो भक्ति करने से क्या संसार का सुख मिलेगा? भक्ति नहीं करने से भी संसार का सुख मिल सकता है। बहुत सारे संसार के सुख में है ना, आनंद से है, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, खुशी से रह रहे। भक्ति से संसार का सुख नहीं मिलता, भक्ति से पैसा नहीं मिलता। आपको पता है भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति से भक्ति, भक्ति का फल है भक्ति। भक्ति से भक्ति मिलती है, और भक्ति से भक्ति मिलती है, और फिर भक्ति से भगवान मिलते हैं, और फिर भगवान से भगवान के भक्त मिलते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तब भगवान के भक्त मिलते हैं, भक्ति से भक्ति मिलती है। तो यहाँ पे हमारी कहानी में पाप और पुण्य के परे जब भरत महाराज अपना फोकस एकदम भगवान के पर लगाए हुए हैं, तब इंद्र ने भी उनको कष्ट देना छोड़ दिया, बृहस्पति का बात मान लिया। जब हम भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जब हम और कोई कामना नहीं रखते हैं, तब योग माया हमारी मदद करती है। जैसे हम भगवान के पास आने की कोशिश करते हैं, पहले तो माया रोकती है, हर गेट पे रोकती है कि ये क्यों इतना आगे 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 आ रहा है, इसको ये प्रलोभन दो, इसको ये प्रलोभन दो, इसको पीछे करो। लेकिन जब माया देखती है कि भाई इसको कुछ नहीं चाहिए, हाँ ये भक्तों के संग में है, हाँ ये बहुत प्रोटेक्टेड है, भक्तों के संग में रहने से एक प्रोटेक्शन होता है। आपको पता है ये जो मंगूस, जानते हैं हिंदी में मंगूस बोलते हैं, मंगूस और स्नेक, मंगूस और सांप, मंगूस और सांप सब समय झगड़ते हैं, आपको पता है? और मंगूस और सांप जब झगड़ते हैं, पता है कौन जीतता है? मंगूस ही जीतता है। क्यों मंगूस जीतता है? मंगूस में तो विष भी नहीं है, सांप में तो बहुत ज्यादा विष है, और सांप अपने विष से बार बार मंगूस को डसता है, फिर भी मंगूस जीत जाता है, क्योंकि मंगूस बहुत बुद्धिमान होता है। मंगूस क्या करता है, जहाँ पे झगड़ा होता है या जहाँ उनका जो युद्ध होता है, वो जान मुझ के ऐसे स्थल में युद्ध करेगा जहाँ पे आसपास में एक विशेष विशेष रूप की कुछ जड़ी बूटियाँ वाला झाड़ उगता है, उसमें एक विशेष स्मेल होती है, एक विशेष सुगंध होती है। तो जितने बार सांप मंगूस को डसता है तो मंगूस जाता है उस झाड़ियों में, उसकी सुगंध लेता है, तो फिर से उसको शक्ति मिलती है, विष का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, और फिर आता है और फिर सांप से झगड़ा करता है। तो इतना बार जब सांप विष से उसको जो है डस के उसका पूरा विष खत्म हो जाता है सांप का, और फिर जो है मंगूस उसको कॉन्कर कर लेता है। तो क्यों मंगूस जीतता है? सांप उससे शक्ति वाला है, सांप के पास ज़्यादा विष है, फिर भी क्यों? क्योंकि वो उस झाड़ियों का सहारा लेता है, उस झाड़ियों का सुगंध लेता है, और उसको पुनः एक नई शक्ति प्रदान होती है। उसी तरह से हमको क्या होता है, हम जो ये भौतिक जगत में जीते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक, हमको माया जो है सांप की तरह काटती है, बार बार काटती है। क्या बोलती है? आप मंडे से सैटरडे देखो आपको फोन आ जाएगा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, आपको ये चाहिए, आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको वो क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन क्योंकि हम हर संडे को भक्तों का संग लेते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, गुरु के आश्रय में रहते हैं, हम भक्ति करते हैं, वैष्णव की कृपा से हमको क्या होता है, एक शक्ति प्रदान होती है। जब वो फ़ोन करते हैं तब हमारे पास शक्ति है बोलने के लिए कि नहीं भाई, हमारे पास ISKCON का इंश्योरेंस है। क्या है ISKCON? मेरी कोई कंपनी नहीं है, इस्कॉन का लाइफ इंश्योरेंस। हमारे पास ISKCON का इंश्योरेंस, हमको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये बोलने की शक्ति कहाँ से मिलती है? क्योंकि भक्तों का संग करते हैं। भक्तों का संग करते हैं मतलब उनकी भक्ति की सुगंध लेते हैं हमारे जीवन में, और फिर हमको नई शक्ति का प्रदान होता है। तो बहुत ज़रूरी है भक्तों का संग लेना। तो यहाँ क्या हुआ, और भक्तों का संग जब लेते हैं, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, तब माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जब माया देखती है कि इसका और कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, फिर वो छोड़ देती है। और फिर योग माया हमारी मदद करती है भक्ति करने के लिए। बहुत बार आप देखोगे कि जब आपने दृढ़ निश्चय बना लिया है कि मैं भक्ति करूँगा, मैं आगे जाऊँगा, मैं दान पुण्य करूँगा, मैं भगवान की भक्ति में सहयोग करूँगा, प्रभुपाद की मूवमेंट में मैं आगे बढ़ूँगा, जब आप दृढ़ निश्चय करो तो आप देखोगे कि आपको अनप्रेसिडेंटेड जगहों से आपको हेल्प मिल रही है। हम बहुत बार देखते हैं, कुछ भक्त आके हमसे शेयर करते कि माता जी देखिए, हम आना चाह रहे थे संडे प्रोग्राम में, हमने मन बना लिया था, तो जैसे हमारी गाड़ी पार्क हो गई उसके बाद ही बारिश आई। हाँ, ऐसा होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट, या तो पेट्रोल ख़त्म हो गया तो सीधा पेट्रोल पंप के पास ही गाड़ी रुकी, या ऐसे होने वाला था लेकिन करेक्ट इस डेट पे हमारी एग्ज़ाम नहीं पड़ी और हम प्रभुपाद अपीयरेंस डे में आ पाए या जन्माष्टमी में आ पाए। ऐसे बहुत बार हमारे साथ छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अरे कोई तो है जो हमारे मदद कर रहा है भक्ति करने की। कौन है वो? योग माया है। जब वो देखती है कि नहीं, ये जेन्यूनली हृदय पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो वो मदद करती है। तो यहाँ पे बृहस्पति ने मदद की। जब बृहस्पति ने देखा कि हाँ, भरत महाराज का फोकस सही है, वो भगवान के पास जाना चाहते हैं, तब उन्होंने इंद्र को बोला तुम रोको बारिश को और उसको आगे जाने दो। तो उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं और श्री राम तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे लक्ष्मण जो है दूर से देख रहा है, वो झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और दूर से देखता है कि क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा धूल आ रहा है, क्या है ये? तो अयोध्या का फ्लैग दिखाई दे रहा है, अयोध्या का झंडा दूर से दिखाई दे रहा है, उसका मतलब भरत आ रहा है। तो भरत क्यों आ रहा है, क्या वो श्री राम को हानि पहुँचाता है? तो वो एकदम गुस्सा में झाड़ के नीचे उतर के बोलता है मैं जो है भरत को मार डालूंगा। और फिर भगवान बोलते हैं क्यों, क्या तुम अयोध्या के राजा बनना चाहते हो भरत को मार के? मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, है रामायण में भगवान ऐसा ऐसा शब्द यूज़ करते हैं लक्ष्मण के लिए। और वो एकदम मतलब बहुत चक्का रह जाता है कि नहीं, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है। मैं फिर तुम क्यों ऐसा उस पर ईर्ष्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तुम ऐसे विचार उसके लिए क्यों रख रहे हो? तो फिर लक्ष्मण जो है क्षमा मांगता है, और फिर काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं बट समय की ऑलरेडी इट्स 9:00, जो काफ़ी दूर जाना है। तो और फिर जब फाइनली जो है भरत महाराज आ जाते हैं और श्री राम जी अपने अपने जो झोपड़ी के अंदर में बैठे हैं श्री राम जी, तो अब आप देखिए एक इंसान इतनी दूर से आया है इतनी मेहनत करके, तो इमीडिएट रिएक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि यू नो जो सिनेमा में दिखाते एकदम झोपड़ी को खोल और भैया मैं आ गया, तो ऐसा जो होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। आते हैं भरत जी और जहाँ पे झोपड़ी है भगवान जी की, वहाँ पे झाड़ के नीचे बैठते हैं और बस रोते हैं, बस कुछ नहीं बोलते, ना एक बार बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ या कुछ भी नहीं, बस रोते हैं। और फिर श्री राम जब अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर आते हैं और भरत को आलिंगन करते हैं। तो इसमें हम ये सीखते हैं कि मेहनत तो हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, उसके बाद में जो भगवान की कृपा मिलेगी वो उनकी मर्जी से मिलेगी, वो हमारी खुशी से नहीं। जे हमने मेहनत की इसलिए हमें भगवान को हमें देना ही चाहिए, ऐसी शर्त से हम भक्ति नहीं करना चाहिए, ऐसी शर्त से नहीं। वो देंगे नहीं देंगे, कृपा करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी, हमें हमारी साधना तो करनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भगवान जो है वो साधना सिद्ध है कि कृपा सिद्ध है? भगवान तो कृपा सिद्ध ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं 16 राउंड्स इतने ईयर के लिए करूंगा, मैं ये पालन करूंगा तो फलाना 2048 में भगवान को मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। वो उनकी मर्जी है, हम लोग तो सर्वेंट है, मास्टर की मर्जी है। तो भगवान तो कृपा सिद्ध है, कृपा से ही मिलेंगे, हमारी साधना से नहीं मिलेंगे। थैंक यू माता जी, ये बात बता दी, अब कम से कम 16 राउंड्स करना नहीं पड़ेगा। ऐसे भी आपने बोल दिया कि साधना से तो नहीं मिलते, अब उनकी जब मर्जी तब मिलेंगे, अब कृपा से मिलेंगे और क्या। नहीं, बट कृपा तभी होगी जब साधना करेंगे, ये तो पूरा एक चक्कर है ना। आप साधना करेंगे करेंगे करेंगे, आप साधना करते करते थक जाएंगे, तब भगवान बोलेंगे ठीक है अब मैं कृपा करूँगा, है ना। हमें हमारी मेहनत तो हमें करनी है। शास्त्र में कहानी आती है ना चिड़िया की, वो चिड़िया अपने अंडे समुद्र के पास में रखती है और फिर समुद्र वो अंडों को लेके चला जाता है, और फिर चिड़िया समुद्र को बोलती है कि है ना मैं पूरा समुद्र पी जाऊंगी और मेरे अंडे लौटा दो। समुद्र बोलता है ठीक है पी जाओ, और फिर वो नहीं छोड़ती है, वो अपनी छोटी सी चौच में पानी लेती है और फेंकती है, पानी लेती है और फेंकती है। और नारद मुनि जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत दया आती है, और जब वो ऊपर वैकुंठ में जाते हैं तो गरुड़ को बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी बहन देखो नीचे बहुत तकलीफ में है। और फिर जब गरुड़ नीचे आते हैं और ये देखते हैं, तब गरुड़ जो है एकदम चिल्लाते हैं समुद्र पे कि तुम ये अंडे वापस दोगे या मैं तुमको पी जाऊँ। और गरुड़ जब गुस्से से अपने पंख को बस थोड़ा सा उड़ाते हैं तो समुद्र कुछ किलोमीटर पीछे चला जाता है। आज भी आप गुजरात साइड में जाओ तो आप देखोगे कि समुद्र कुछ पीछे की थोड़े किलोमीटर पीछे है, तो जस्ट अपने पंख से जो है समुद्र को पीछे कर देता है, और फिर समुद्र डर के जो है वो अंडों को वापस कर देता है। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने साधना की, तब जाके कृपा हुआ। बिना साधना के कृपा नहीं होता है। हम लोग ना साधना करना चाहते, ना कोई कष्ट करना चाहते, तो भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही, भगवान की कृपा। हमारा जो नेचर है थोड़ा सा बंदर जैसा है। बंदर को आप अगर बीज दे दो ना, बोला ये बीज तुम डालोगे उसमें पानी डालोगे तो बहुत अच्छा आम का पेड़ आएगा, तो बंदर ना डाल देगा बीज, अच्छा से माटी खोद के बीज डाल देगा, पानी भी डाल देगा, लेकिन हर एक घंटा में देखेगा कि आया कि नहीं, आया कि नहीं। वो खोदेगा फिर देखेगा कि आ गया क्या, झड़ आ गया, झड़ आ गया। वैसे हमारा भी ऐसे स्वभाव होता है, ये 6 महीना नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से 16 माला कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। तुम क्या चाहते हो भाई, तुम एक बार करो बस भगवान आ जाए, सब तुम्हारे दुख दूर करके बस एकदम। कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो टाइम लगता है। वो तुम अभी बीज बोए हो, थोड़ा समय लगेगा, वो आएगा, झाड़ बड़ा होगा, फिर फूल आएगा, उसके बाद फल आएगा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। डिसअपॉइंट नहीं होना है, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, मेहनत तो करनी है। मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ कि हम अगर ऐसे बैठे और बोले कि भगवान की जब कृपा होगी तब होगी, तो वो कभी नहीं होगी। एक आदमी एक कंपनी में काम करता है, उसका टाइम है रोज शाम को 5:30 बजे घर जाना। तो एक दिन 5:30 बजे वो घर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसके बॉस ने उसको बुलाया, बोला रुक जाओ। बोला क्या हुआ सर? पर देखो ऐसे ऐसे है, ये सारे कंपनी का हमें अकाउंट सॉर्ट आउट करना है, तुम आज रात तक बैठो उसको सॉर्ट आउट करो, हम लोग कल ही पेमेंट दे देंगे। बोला ठीक है। उसने 2-3 घंटा मेहनत किया, 8:30 बजे तक सब कुछ बनाया, चेक लिखा, बोला सर ये हमको पेमेंट देना है, ये लीजिए चेक। सर ने बोला ठीक है रख दो, हम लोग बाद में देखेंगे। बोला अरे मैंने इतना मेहनत की, आप साइन कर दीजिए बस हम भेज देते। बोलते नहीं मैं देखूंगा, तो अब रख दो साइड में। दूसरा दिन फिर वही बात, 5:30 बज गया, वो अपना कैरेज लेके जो घर जा रहा है, सर ने फिर से बुलाया, बोले देखो ये कंपनी का तुम अकाउंट्स ठीक करो, हमें उसको इमीडिएटली चेक भेजना है। तो इस बार ये बहुत इंटेलिजेंटली ब्लैंक चेक लेके आ गया, बोला सर पहले आप साइन करो उसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि मैं पूरा मेहनत आप करवाते फिर आप साइन नहीं करते। सर ने बोला मैं ब्लैंक चेक पे तो साइन नहीं करूँगा, तुम पूरा पूरा बैठ के करो लिखो, उसके बाद में ही मैं साइन करूँगा। तो भगवान के साथ भी हमारा रिलेशन ऐसा ही है, मेहनत हमें पूरी पूरी करनी है। अगर हम वृंदावन जाना चाहते हैं, हम मायापुर जाना चाहते हैं, हम मंदिर जाना चाहते हैं, तो हमें अपने सोफा से उठना पड़ेगा, टीवी का रिमोट साइड में रखना पड़ेगा, साड़ी पहननी पड़ेगी, रेडी होना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, फिर गाड़ी चालू होने के बाद अगर गाड़ी पंचर हो गई या बारिश आ गई तो तब हम बोल सकते हैं कि भाई भगवान की मर्जी, चलो आज नहीं जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बैठे हैं और वहाँ जी का कुछ मूवी चल रहा है और हम बोले जी भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको मेहनत करनी है, उसके बाद अगर आप सफल नहीं होते तब आप बोल सकते कि भाई भगवान ने, भगवान की मर्जी, मैंने तो कोशिश की थी। तो हमें हमारी प्रयत्न तो करनी है, साधना तो करनी है, उसके बाद भगवान की मर्जी, वो देना चाहे नहीं चाहे वो उनकी मर्जी है। भगवान के जो गोलोक वृंदावन है उसका दरवाज़ा अंदर से ही खुलता है, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। हमारे इस्कॉन के कोई भी मंदिर में आप देखिए, ऑल्टर अंदर से ही खुलता है, पुजारी ही खोलता है। वहाँ जाना तो भगवान की कृपा से ही जा पाएंगे, हमारे बल पे तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक न एक दिन वो दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। तो ऐसे श्री राम और भरत का मिलाप होता है और भगवान श्री राम भरत को आलिंगन करते हैं, और फिर हम सब जानते हैं कि कैसे भरत महाराज भगवान की पादुकाएं लेके अपने सिर पे उनका धारण करके 14 साल उन पादुकाओं का सेवा करते हैं। सो इसी तरह से रामायण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत सारे नए लोगों का को हम देख रहे हैं, तो रामायण मंदिर में हर संडे चल रहा है रामायण पे प्रवचन, तो आइए आप लोग भी मंदिर में आइए और रामायण की कथा अमृत का श्रवण करिए। सो आज मैं यही विराम दूंगी, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल लेक्चर, बट आई डोंट नो वेदर आई एम क्वालिफाइड टू आस्क दिस क्वेश्चन। लक्ष्मण जी तो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, तो उनको कैसे शंका हो सकता है कि भरत महाराज जो आ रहे हैं कि भगवान कहानी पहुंचने के लिए आ रहे हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो भगवान के साथ रहते हैं फिर भी उनमें शंका क्यों आई या उनको संदेह क्यों आया। जैसे हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो भगवान के साथ में रहता है उनको भी कुछ हो सकता है, जो भक्तों के साथ रहता है वो ही बच के रह सकता है। जो भगवान के साथ रहते हैं उनका भी कोई गारंटी नहीं है कि उनके मन में कब देखिए। इसीलिए रामानुज संप्रदाय में भगवान के दर्शन के लिए अलग सा सिस्टम बनाया गया है कि बहुत घंटे घंटे आप लाइन में रहो और उसके बाद आपको सिर्फ भगवान का दर्शन बस एक आधा मिनट के लिए होगा। और जब आप सिर्फ आधा, इतने घंटे रुकने के बाद जब आधा मिनट के लिए भगवान का दर्शन होता है तो उस समय में आपको और कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि आप जितना गप्पा मारना चाहते थे वो तो मार लिए, 2-3 घंटा आप तो बोर भी हो गए ऐसे भी, और आपको पता है कि ये आधा मिनट के बाद में आपको कोई धक्का मारने वाला है और नहीं देख पाओगे और ठाकुर जी को। तो अब तब क्या होता है कि आप विग्रह अपराध नहीं करते हो। देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपराध है, सेवा अपराध है, विग्रह अपराध है, गुरु अपराध। अगर आप विग्रह के सामने खड़ा रह के कुछ और सोचते हो तो बहुत बड़ा अपराध है। तो इन्होंने इसलिए ऐसे सिस्टम बना दी, तो आप अपराध करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप आधा मिनट के लिए हो, उसमें भी आपकी बहुत सारी चीज़ें बोलना है, जैसे कि अमेरिका का वीज़ा है, हॉल टिकट रखना है, ये साइट इसमें बिक जाए, बेटी की शादी, ऑलरेडी लिस्ट एक तो बड़ा रहता है, तो आप और अपराध करने का कोई चांस ही नहीं है। आप पूरा लिस्ट पढ़ोगे तब तक कोई आपको धक्का मार देगा, वो हो गया खत्म, है ना। इसीलिए तो कि भगवान के साथ रहने पर भी आपका डाउनफॉल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट भक्तों के साथ रहने से भक्त जो है हमें पुश करेंगे, भक्त जो है हमें अच्छा लगे ना लगे बोलेंगे जी प्रभु आप सो रहे हो जब करते करते, प्रभु आप ये कर रहे हो, आप ऐसा मत करो, क्योंकि ठाकुर जी बहुत नहीं, मैं ऐसा बोलने पे मैं भगवान की महिमा को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो भगवान के साथ रहते हैं भगवान इतने दयालु है कि हम जो सोचते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, वो हमें करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो हमें करेक्ट करते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान तो इतने करुणामय है कि भगवान के सामने तो पूतना जैसी कोई विष लेके भी भगवान को पिलाने आ गई तो भगवान बोलेगा ये तो मेरी माँ है। समझ में आ रहा है ना? तो हम इतने खराब विचारों के साथ भी जब भगवान के साथ में रहेंगे तो भगवान तो हमें माफ़ ही कर देते हैं। भगवान तो उसमें भी, मैं हमेशा बताती हूँ ना कि भगवान तो एक ऐसे इन्विजिलेटर है जो सब समय सोचते हैं कि मैं यहाँ एक आधा मार्क दे दूँ, यहाँ एक आधा मार्क दे दूँ, कैसे भी उसको पास कर दूँ, बस इसका 35 आ जाए 100 में से और ये मुक्ति पा जाए। तो भगवान के साथ जब रहेंगे तो ज़रूरी नहीं भगवान हमें करेक्ट करे। भगवान को तो हमारी हर चीज़ प्यारी लगती है, जैसे एक पिता को अपना बच्चा प्यारा लगता है, वो जैसा भी तोतला तोतला बोले बस अच्छा लगता है। वो कभी कभी बच्चे लोग पिताजी को मार देते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही मारते हैं, मैं देखती हूँ ना। मैं तो स्कूल चला रही हूँ तो एकदम मैं तो आश्चर्य हो जाती हूँ। और हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्राय सब डॉक्टर के बच्चे हैं, कोई केयर हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई अपोलो का है, ये है। तो उन डॉक्टरों को तो मैं देखती हूँ जब अपने कैबिन में होते, इतने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स वेट करते हो, जब हमारे स्कूल में आते हैं तो उनका बच्चा एक करके थप्पड़ मार देता है क्यों लेट आए बोल के, और वो बेचारे एकदम मतलब ऐसे करके लेके चले जाते हैं। तो ये तो पिता का प्यार है। तो भगवान तो हमारे पिता जैसे हैं, तो हम जैसे भी हो हमको स्वीकार करते, बस हमें प्यार करते हैं हम जैसे भी हो। लेकिन भक्त लोग जो है वो हमें करेक्ट करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए हमें जो है वैष्णवों का संग मांगना है, वैष्णवों के संग में रहना है। और कोई प्रश्न? यही खत्म करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।